आज है 22 जुलाई दिन बुधवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। संसद में ललित गेट मुद्दे पर दूसरे दिन हंगामा। विपक्ष सुषमा वसुंधरा के इस्तीफे पर अड़ा।
रिलेटिंग टू श्रीमती सुषमा स्वराज, प्लीज स्टार्ट द डिस्कशन राइट नाउ। दैट वाज आवर ऑफर यस्टरडे, दैट्स आवर ऑफर टुडे।
पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने ईश निंदा के मामले में एक महिला की मौत की सजा की स्थगित। पूर्वी अफ्रीका में सोमाली चरमपंथी गुट अल शबाब क्यों बना हुआ है दहशत का पर्याय।
अल शबाब का भी बोको हराम से AQIMC के भी कनेक्शन और लिंकेजेस, तो किस तरह से ये डील करेंगे, ये चैलेंज इतने जल्दी मुझे नहीं लगता है इसका वो हो सकता है।
सुनेंगे दुनिया जहां, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष के विरोध और हंगामे से भरा रहा। विपक्ष ने आज भी भाजपा के तीन नेताओं के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष ललित मोदी मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग कर रहा है। बहस के दौरान सुषमा स्वराज इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने के लिए राजी हो गईं, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। उधर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उसके मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। उत्तरी अफगानिस्तान में एक बम विस्फोट में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर लोग नागरिक हैं। लगभग 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुलिस के जवान और सैनिक भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आत्मघाती हमलावर सुरक्षा बलों के एक वाहन को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन विस्फोट की चपेट में एक भीड़ भरा बाजार भी आ गया। अभी तक किसी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। टेक्सास में एक काली महिला की मौत की जांच कर रही अमरीकी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का वीडियो फुटेज जारी किया है। पुलिस डैशबोर्ड कैमरे से की गई इस वीडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस सैंड्रा ब्लैंड को लेन बदलते वक्त सिग्नल ना देने के लिए रोकते हुए दिख रही है। उसके बाद पुलिस अधिकारी के साथ सैंड्रा की बहस होती है और ऑडियो से पता चलता है कि बहस मारपीट तक आ गई थी। तीन दिन बाद जेल में सैंड्रा ब्लैंड ने फांसी लगा ली, लेकिन सैंड्रा का परिवार उसकी मौत की स्वतंत्र जाँच की मांग कर रहा है। सैंड्रा की माँ जिनीवा रीड व्हील ने कहा कि उनकी बेटी की मौत एक अहम मोड़ है।
She was my convict. She wasn't the suspect. She was my baby.
वो मेरी अपराधी नहीं थी, वो कोई संदिग्ध भी नहीं थी, वो मेरी बच्ची थी। और आप भी जरा ये सोचें कि उसकी उम्र में आप क्या कर रहे थे। सो खबरों में आ रही कुछ बातें सच हैं और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ असल मुद्दा है जो उसके साथ हुआ और वो इस दुनिया को बदल देगा। ये थे जिनीवा रीड व्हील के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन के शहर अदन का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 महीने की लड़ाई के बाद फिर खोल दिया गया है। सबसे पहले सऊदी अरब का सैन्य विमान यहां पहुंचा। निर्वासित राष्ट्रपति अब्दुर्रबू मंसूर हादी की वफादार सेना ने इस हवाई अड्डे को हूती विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा लिया। मार्च के अंत से ही सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने हूती विद्रोहियों को तितर बितर करने के लिए हवाई हमले शुरू कर दिए थे। देश छोड़ने के लिए बाध्य होने से पहले यमन के राष्ट्रपति अदन में ही रह रहे थे। ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ड्रोन्स के मालिकों के लिए सुरक्षा की नई हिदायतें जारी की हैं। अथॉरिटी का कहना है कि इस उपकरण को लेकर हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं। पिछले साल ही एक ड्रोन यात्री हवाई जहाज के सामने आ गया था जो हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने वाला था। सोमवार को पोलैंड के वारसॉ हवाई अड्डे के करीब 108 यात्रियों वाला एक जहाज एक ड्रोन से लगभग टकरा ही गया था। नए निर्देशों के अनुसार ड्रोन्स को 120 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ाना जरूरी होगा। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर लाइव सुशीला सिंह के साथ। आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात संसद की कार्यवाही की। जैसा कि आपने प्रगति सक्सेना से समाचारों में सुना, मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष बीजेपी के तीन नेताओं के इस्तीफे पर अड़ा रहा। हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि वो ललित गेट मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं। दरअसल विपक्ष IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद को लेकर सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष ने संसद में जहां हंगामा किया, उधर सरकार इस बात पर अड़ी रही कि इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक रिपोर्ट के साथ नितिन श्रीवास्तव।
मॉनसून सत्र का दूसरा दिन कितना अहम रहने वाला था, इसका अंदाजा मंगलवार सुबह ही हो गया था, क्योंकि खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया था कि भाजपा के नेताओं के इस्तीफे पहले होंगे और संसद में चर्चा बाद में होगी। बहरहाल सुबह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की एक संसदीय समिति की बैठक में शामिल हुए। संसद के दोनों सदनों में पार्टी की रणनीति पर विचार करने वाली इस बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। हाथ में और आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए कांग्रेस सांसदों ने पहले सदन के बाहर धरना देने की शुरुआत की, लेकिन बाद में धरना खत्म भी कर दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को तीन मामलों पर घेरा। पहले तो उन्होंने ललित मोदी की कथित मदद के लिए सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे सिंधिया का इस्तीफा मांगा और बाद में शिवराज सिंह को भी अपने तीखे बयानों का निशाना बनाया,
जिन्होंने भारतीय संविधान की शपथ लेकर उन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा हासिल किया, विदेश मंत्री है, कानून को तो मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद करने जुटी हुई है। और इतना ही नहीं, विदेश मंत्री से भी कई कदम आगे बढ़कर राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है तो वो ललित मोदी की मदद करने के लिए वो जी जान से जुटी हुई है।
वैसे इस सब के बीच सुषमा स्वराज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक सनसनीखेज बात लिख डाली। उन्होंने कहा कि वे एक कांग्रेसी नेता का नाम उजागर करने वाली हैं जिन्होंने उन पर कोल घोटाले में अभियुक्त संतोष बागरोडिया के लिए राजनयिक पासपोर्ट दिए जाने का दबाव बनाया था। इस ट्वीट के बाद एक और बवंडर उठ खड़ा हुआ। जाहिर है सुषमा स्वराज के संसद पहुंचने पर सभी पत्रकारों और कैमरा पर्सनों की नजर उन्हीं पर थी। सुषमा ने बस इतना भर कहा कि वे संसद में जवाब देंगी और उस कांग्रेसी नेता का नाम भी लेंगी।
आपने ट्वीट के बाद
बोलना
वाला
नहीं
है,
मैंने
खाली
फोटो ले लो। स्टेटमेंट यू वुड लाइक टू से एनीथिंग?
सुषमा स्वराज के इस कांग्रेसी नेता के नाम उजागर करने वाली बात पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सुषमा स्कूल के बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हैं, जो कि गलती करके पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि दूसरे ने भी गलती की। जबकि कांग्रेस के ही सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि अब तक चुप क्यों थी सुषमा, नाम का खुलासा करें, भ्रष्टाचार के मामले में जो भी नाम सामने आए कार्रवाई होनी ही चाहिए। उम्मीद के मुताबिक दोनों ही सदनों में पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को भाजपा नेताओं से मिली कथित मदद पर ही गहमा गहमी रही। हालांकि दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर के बाद नहीं हो सकी और स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के तेवर बेहद तीखे रहे। सोमवार की तरह ही मंगलवार को भी राज्यसभा में वित्त मंत्री और भाजपा नेता अरुण जेटली ने खड़े होकर सभी विपक्षी दलों पर कटाक्ष भी कर डाला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केंद्र के मुद्दों को राज्य के मुद्दों से मिलाकर देख रहे हैं, जो कि गलत है और ये एक गलत ही परंपरा स्थापित करने वाली बात हो जाएगी। अरुण जेटली ने विपक्ष को ये कहकर भी ललकारा कि खुद सुषमा स्वराज अपनी बात रखेंगी और इसके लिए संसद चलने दी जाए और बहस हो।
इफ द ऑपोजिशन वांट्स द रूल्स टू बी चेंज्ड एंड स्टेट इश्यूज टू बी डिस्कस्ड, वी विल डिस्कस इश्यूज ऑफ वेरियस स्टेट्स, वी आर रेडी फॉर दैट। रिलेटिंग टू श्रीमती सुषमा स्वराज, प्लीज स्टार्ट द डिस्कशन राइट नाउ, दैट वाज आवर ऑफर यस्टरडे, दैट्स आवर ऑफर टुडे।
शोर शराबे के बीच मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी स्थगन की भेंट चढ़ा। विपक्ष के तेवरों को देखते हुए लगता है कि ऐसे अभी कई और दिन देखने पड़ेंगे संसद को, और मोदी सरकार के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया भी ज्यादा जटिल होती रहेगी। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
तो अब कल देखना होगा कि संसद में सरकार ललित गेट मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे पाती है या नहीं। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय विषय। अमेरिका की सेना का कहना है कि सीरिया में हुई एक हवाई कार्रवाई में अलकायदा के प्रमुख नेता की मौत हो गई है। पेंटागन की तरफ से जारी किए गए वक्तव्य में इस अलकायदा के नेता का नाम मोहसिन अल फदली बताया गया है। पेंटागन का कहना था कि अल फदली का संबंध खोरासन समूह से है और उन्हें पाकिस्तान से सीरिया पश्चिम के खिलाफ हमले की योजना बनाने के लिए भेजा गया था। एक रिपोर्ट के साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
कई वर्षों से अमेरिका को मोहसिन अल फजली नामक इस चरमपंथी की शिद्दत से तलाश थी। मंगलवार को अमेरिकी सैन्य मुख्यालय के प्रवक्ता कैप्टन जेफ डेविस ने एक लिखित बयान में अल फजली को मार गिराए जाने की पुष्टि की। पेंटागन प्रवक्ता का कहना था कि अल फजली के मारे जाने से अलकायदा के अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ जारी कार्रवाई में कमी आएगी। उनका कहना था कि अल फजली को 8 जुलाई को सीरिया के सरमादा शहर के करीब उस समय हवाई हमले करके मारा गया जब वो एक गाड़ी में सफर कर रहा था। पेंटागन प्रवक्ता जेफ डेविस का कहना है कि मोहसिन अल फजली अफगानिस्तान में भी अमरीकी फौजियों के खिलाफ लड़ता रहा था और वो अलकायदा के शीर्ष नेताओं के उन करीबी लोगों में से था जिन्हें 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बारे में भी पहले से आगाह कर दिया गया था। अमरीका का कहना है कि चरमपंथी संगठन अलकायदा से ही जुड़े खुरासान गुट के चरमपंथी अल फजली ने अमरीका पर और अन्य पश्चिमी देशों पर हमले करने की ठानी हुई थी। محسن الفضلی کا جنم کویت میں ہوا تھا اور وہ خراسان گٹ کا سرغنہ تھا۔ امریکی سرکار نے اس پر $70,00,000 کا انعام بھی رکھا تھا۔ پچھلے سال ستمبر مہینے میں خراسان گٹ کے خلاف امریکہ نے سیریا میں حملے تیز کر دیے تھے۔ اس سمے امریکی سینا کے ڈائریکٹر آف آپریشنز ولیم میویل نے خراسان گٹ سے خطرے کے بارے میں کہا تھا۔
We believe the Khorasan group was nearing the execution phase of an attack either in Europe or the homeland. We know that the Khorasan group
ہم سمجھتے ہیں کہ خراسان گٹ امریکہ پر حملے کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خراسان گٹ نے پشچمی دیشوں کے لوگوں کو اپنے گٹ میں شامل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، جس سے وہ پشچمی دیشوں میں حملے کر سکے۔ یہ تھے امریکی فوج کے ڈائریکٹر آف آپریشنز ولیم میویل کے شبد۔ سیریا میں استھت خراسان گٹ میں القاعدہ کے ہی چنے ہوئے چرمپنتھی شامل کیے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ القاعدہ کا سرگنہ ایمن الزواہری نے ہی الفضلی کو سیریا میں پشچمی دیشوں کے لوگوں کو گٹ میں بھرتی کرنے کے لیے خاص طور پر بھیجا تھا۔ امریکہ کے نیتریتو والے گٹھ بندھن نے سیریا اور عراق میں آئیسس یا داعش اور انیہ چرمپنتھی سنگٹھنوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور امریکہ نے سیریا میں خراسان گٹ کے کئی پرشکشن کیمپوں کو بھی ہوائی حملے کر کے تباہ کر دیا ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
پاکستان میں سپریم کورٹ نے ایش نندا کی دوشی پائی گئی ایک عیسائی مہیلا کی موت کی سزا کو استھگت کر دیا ہے۔ اس مہیلا کا نام آسیہ بی بی ہے اور انہیں 5 سال پہلے ایش نندا کے آروپ میں سزا سنائی گئی تھی، حالانکہ وہ خود پر لگے آروپوں سے انکار کرتی ہیں۔ میں نے اس بارے میں جانکاری کے لیے اسلام آباد فون کر شہزاد ملک سے پوری جانکاری مانگی۔
سب سے پہلے تو یہ سزا جو تھی وہ ہائی کورٹ نے سنائی تھی، جس کے خلاف آج اپیل جو انہوں نے 9 ماہ پہلے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، تو آج اس کی باقاعدہ سماعت ہوئی ہے، جس پر جو انیشل آرگومنٹس ہوئے ہیں اس سے جو عدالت تھی اس نے کافی سیٹسفائی تھی، اور انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جو انہوں نے 2014 میں دیا تھا اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جب تک اس درخواست کا فیصلہ، اس اپیل کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک جو آسیہ بی بی کو ڈیتھ سینٹینس اوارڈ کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اس کو ایگزیکیوٹ نہ کیا جائے۔ تو اب بھی اس پہ جب اس کی ریگولر ہیئرنگ ہوگی، اور ریگولر ہیئرنگ میں بھی ابھی 3 سے 4 ماہ لگ جائیں گے، تو اس وقت تک جب تک اس درخواست کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی اس وقت تک انہوں نے کنسرن اتھارٹیز سے یہ کہا ہے کہ وہ اس ڈیتھ سینٹینس پر اس کو امپلیمنٹ نہ کریں۔
آسیہ بی بی جو ہے ایش نندا کے آروپ کو نکارتی رہی ہیں، اور ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ان پر کسی مسلم مہیلا نے پرسنل گرج یعنی بدلے کی کاروائی کے تحت یہ آروپ لگایا ہے۔ کیا اس بارے میں کچھ پتہ چل پایا ہے کہ کیا ہے پورا معاملہ؟
جی دیکھیں، یہ پاکستان میں یہ معاملہ بڑا ہی حساس ہے، انتہائی سینسٹیو یہ ایشو اس کو مانا جاتا ہے، اور اس سے پہلے آسیہ بی بی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اسلام آباد میں بھی ایک جو کرسچن لڑکی تھی اس پہ انہوں نے یہ آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے بھی بلاسفیمی کی ہے، اور جب وہ سارے معاملات ہو گئے، سارا پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو ایسی بات کوئی نہیں تھی، لگ یہی رہا تھا کہ پرسنل گرج ہے، جس کے بعد وہ جو جس لڑکی پہ انہوں نے لگایا تھا آروپ لگایا تھا اس کو تو عدالت نے جووینائل قرار دے کے ان کو چھوڑ دیا، جبکہ جنہوں نے ان پر آروپ لگایا تھا ان کے خلاف آج بھی عدالت میں کاروائی چل رہی ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اور قانون میں تو یہ ہے کہ بلاسفیمی لا کے لیے جو کمپلیننٹ ہوگا وہ گورنمنٹ ہوگی، یعنی کہ گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ہوگا، لیکن یہاں پر اب کچھ ایسے بھی کہا ہوا ہے کہ ایک پرائیویٹ آدمی جو ہے وہ بھی درخواست دے سکتا ہے، جس کو اب باقاعدہ طور پر انٹرٹین کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ اگر کسی پر صرف یہ آروپ لگا کر کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے، تو بہت سے لوگ یہاں پر مذہب سے متعلق بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، تو وہ عدالتوں میں جانا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کو جہاں پہ بھی ملے اس کو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو وہیں پہ مار دیا جائے۔
جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت ہی سنویدنشیل مدعا ہے یہ ایش نندا کا، تو ایسے میں اب آسیہ بی بی اور ان کے پریوار کی سرکشا کو لے کر کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں؟
جی انتظامات تو کوئی نہیں ہے جی، میری ان کے وکیل سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کنسرن تو ہمیں پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، اور پہلے جو تھے شیخوپورہ جیل میں تھی، سینٹرل پنجاب میں ایک جیل ہے، شیخوپورہ ڈسٹرکٹ ہے، وہ اس جیل میں تھی، اب سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے ان کو ساؤتھ پنجاب میں ملتان جیل ہے جو خواتین کی جیل، وہاں پر انہیں بھجوا دیا گیا ہے، اور ان کی فیملی کو جو تھریٹ ہیں وہ ابھی بھی مل رہے ہیں، اور ان کے وکیل کے بقول کے ان کے جو ہسبینڈ ہیں اور ان کی جو فیملی ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف جگہوں پہ ہیں، لیکن وہ جگہ جو ہے وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے۔
ایش نندا کی دوشی مہیلا کی موت کی سزا ہوئی استھگت۔ یہ تھے اسلام آباد سے شہزاد ملک۔ ग्रीस की संसद में बेलआउट समझौते के लिए दूसरे चरण के सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई है। यूरोजोन के देशों और अन्य संस्थाओं की शर्तों के आधार पर इस चर्चा के बाद दो किस्म के प्रावधान पारित किए जा सकते हैं, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और नागरिक न्याय व्यवस्था में बदलाव शामिल है। पिछले हफ्ते अपनी ही पार्टी में विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने इस मसले पर पहले चरण के मतदान में संसद का समर्थन जीत लिया था। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
ग्रीस के आर्थिक बेलआउट समझौते के लिए जरूरी दूसरे चरण के सुधारों पर ग्रीक संसद में आपातकालीन चर्चा शुरू हो गई है। 86 बिलियन यूरो के इस बेलआउट समझौते पर वार्ता करने से पहले ग्रीस को कर्ज देने वाले यूरोजोन के देश चाहते हैं कि ग्रीक संसद उन प्रावधानों को पारित करे जिन्हें प्रायोर एक्शन यानी अग्रिम कार्रवाई कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास इसके लिए अपनी सिरिजा पार्टी के भीतर सहयोग जुटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रीस की जनता इसी बात पर उम्मीदें लगाए हुए है कि ग्रीस यूरोजोन में साथ बने रहे। ग्रीस के वित्त मंत्री यूक्लिड साकालोतोस ने अपने सहयोगी संसद सदस्यों से सरकार के सहयोग की अपील की है और कहा है कि इसके लिए बेहद कम समय है। नए समझौते पर चर्चा करने के लिए हमारे पास केवल 2 हफ्ते और 3 सप्ताहांत का समय है, इसलिए ये बहुत अहम है कि अग्रिम कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि शुक्रवार तक हम लोग वार्ता शुरू कर पाएं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया के लिए सरकार की मांगों को मान लें। ये थे ग्रीस के वित्त मंत्री यूक्लिड साकालोतोस के शब्द। उम्मीद की जा रही है कि संसद में दो किस्म के प्रावधान पारित किए जाएंगे, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और नागरिक न्याय व्यवस्था में बदलाव शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सिप्रास ने ग्रीक बैंकिंग संगठन की मुखिया लौका कैत्सेली से भी मुलाकात की है। कैत्सेली ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बैंकिंग हालातों को फिर से सामान्य करने को लेकर चर्चा की है। बैंकों की छुट्टी अब खत्म हो गई है। हमने प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के साथ चर्चा की है कि वित्तीय प्रणाली को फिर से सामान्य बनाने के लिए अगले कौन से कदम उठाए जाएं। हर किसी का यही मकसद है कि इस बुरे दौर को खत्म किया जाए और इस दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाया जा सके। ये थे ग्रीक बैंकिंग संगठन की मुखिया लौका कैत्सेली के शब्द। ग्रीक में चल रही राजनीतिक हलचलों पर यहाँ के आम लोग भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। एथेंस में बीबीसी संवाददाताओं ने कुछ लोगों से बात की। ये तासोस कोरापिकस थे जो कह रहे थे कि ये सच है कि हमें धैर्य बनाए रखना है। असल में लोग ग्रेग्जिट को लेकर यानी ग्रीक के यूरोजोन से बाहर चले जाने के ख्याल से भी काफी डरे हुए हैं। इसने सभी को डरा कर रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि लोग कितने सचेत हो गए हैं। सोतिरिस नाम के एक व्यक्ति बेहद निराश हैं। वे कहते हैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुझे यही लगता है मेरे पास अब कुछ भी कहने को नहीं है, कुछ भी नहीं। ये थे सोतिरिस के शब्द। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि संसद में चल रही बहस में से कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा।
ग्रीस की संसद में बेलआउट समझौतों के लिए दूसरे चरण के सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई है। ये थे रोहित जोशी। और दुनिया जहां में आज बात पूर्वी अफ्रीका की, जहां सोमाली चरमपंथी गुट अल शबाब काफ़ी समय से दहशत का पर्याय बना हुआ है। कीनिया और युगांडा में हाल के बरसों में कई बड़े हमलों के लिए इस गुट को ही जिम्मेदार माना जाता है। लगभग 2 साल पहले कीनिया की राजधानी नैरोबी में अल शबाब के चरमपंथियों ने वेस्ट गेट मॉल को निशाना बनाया था और इस हमले में 67 लोग मारे गए थे। हमले के बाद से ये मॉल बंद पड़ा है, लेकिन पिछले दिनों इसे दोबारा खोला गया। आज का दुनिया जहां सुनिए अशोक कुमार से।
दुनिया जहां
I'm happy because if you see all these people,
मैं बहुत खुश हूं और अगर आप इन लोगों के चेहरे देखें तो आप भी खुश होंगे। लोग भूल चुके हैं, लोग फिर से खुश हैं। यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं डर को भगाना चाहती थी। हम मरे नहीं हैं, हमें जीना है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचकर दुख होता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई।
ये लोग खुश इस बात से हैं कि नैरोबी का वेस्ट गेट मॉल फिर से खुल गया है
और सहमे हैं उस हमले से जो लगभग 22 महीने पहले कीनिया की राजधानी के इस मॉल में हुआ। 21 सितंबर 2013 नैरोबी का नामी वेस्ट गेट मॉल। दोपहर का समय, मॉल में लोग ही लोग थे। कोई खरीदारी कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, तो कोई फिल्म देख रहा था कि तभी अचानक गोलियां चलने लगी। वेस्ट गेट मॉल बड़े हमले की चपेट में था, जिसे निपटने में कीनिया के सुरक्षा बलों को 3 दिन लग गए और 67 लोगों की मौत के साथ ये हमला 24 सितंबर को शांत हुआ। इससे पहले और इसके बाद भी कीनिया कई बार निशाना बना है। इसी साल अप्रैल में गैरिसा यूनिवर्सिटी में घुसे बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं और चुन चुन कर ईसाई छात्रों को मारा। कुल 147 लोग मारे गए। इन सभी हमलों के लिए बस एक ही चरमपंथी गुट को जिम्मेदार माना जाता है और वो है अल शबाब, सोमाली चरमपंथी संगठन जो कड़े इस्लामी नियमों पर आधारित वहाबी विचारधारा को मानता है और लागू भी करना चाहता है। अल शबाब न सिर्फ कीनिया बल्कि तंजानिया, युगांडा और रवांडा जैसे कई अफ्रीकी देशों के लिए खतरा बन रहा है, पर कीनिया सबसे ज्यादा उसके निशाने पर रहा है। इसकी क्या वजह है? भारत में विदेश मामलों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICWA में अफ्रीकी मामलों पर शोध कर रही डॉक्टर निवेदिता राय बताती हैं।
अल शबाब का जो मेन टारगेट रहा है वो केन्या। उसका कारण यह है कि केन्या जो वहाँ पे ट्रूप्स भेजे हैं, सैनिक जो तैनात हुए हैं सोमालिया में, उसका दबाव डालने के लिए ये सारे टेरर टैक्टिक्स हुआ है। अल शबाब का भी ये भी रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है केन्या में, उस रीजन को, मुस्लिम डोमिनेटेड लैंड को वो केन्या गवर्नमेंट से लेना चाहती है।
सोमालिया में अल शबाब के खिलाफ जो अफ्रीकी संघ की शांति सेना लड़ रही है, उसमें बड़ी तादाद कीनिया के सैनिकों की भी है। इस शांति सेना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन प्राप्त है, तो अल शबाब में सोमालिया ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग भर्ती हो रहे हैं। अमेरिका की डेलावेर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान,
एक वो मार्केट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पे बहुत ज्यादा तवज्जो है। तो अल शबाब का जो रिक्रूटमेंट का जो एरिया है, एक तो एक वो अमेरिका से भी रिक्रूट करते हैं, मिनेसोटा से भी काफी सोमालीज गए हैं, जहां जहां पे सोमाली डायस्पोरा है वहां से वो रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप में और वेस्ट में।
सोमालिया में लगभग 20 साल से कोई सक्षम सरकार नहीं है और इन 20 सालों में देश का एक बड़ा हिस्सा मैदाने जंग बना हुआ है। हाल के सालों में अफ्रीकी संघ की शांति सेना और अमरीकी ड्रोन हमलों के चलते अल शबाब को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उनके कई बड़े नेता मारे गए, मोगादिशु समेत कई अहम इलाके उनके हाथ से निकल गए, लेकिन अब भी वो बड़े हमलों को अंजाम देने में सक्षम दिखते हैं। निवेदिता राय बताती हैं।
अपने आप को पावरफुल प्रोजेक्ट करने के लिए ये सारा टैक्टिक्स और टेरर टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 में जो ड्रोन अटैक हुआ, उनका जो मेन लीडर है अमीर गोदन, वो मरने के बाद दूसरा जो लीडर आया तो उमेर, जो अहमद उमेर, उसने कहा क्या पला कि हम अभी क्या फोर्स है हम दिखाएंगे, वो दिख ही रहा है। तो किस तरह से इसको पावरफुल बोलेंगे या डरे हुए बोलेंगे, ये हम कहना मुश्किल है।
कीनिया की सीमा का एक बड़ा हिस्सा सोमालिया से लगता है और सीमा से लगने वाले इलाकों में ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है। ऐसे में अलशबाब के चरमपंथियों के लिए कीनिया आना जाना न सिर्फ आसान होता है, बल्कि मुख्यतः ईसाई आबादी वाले देश कीनिया में भेदभाव और उपेक्षा की शिकायत करने वाले बहुत से मुसलमानों की नाराजगी का फायदा उठाना भी उनके लिए आसान होता है। इसके अलावा वे विश्व स्तर पर घट रही कई घटनाओं को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। मुक्तदर खान,
एक तो एक ग्लोबल कल्चर बन गया है इस्लामोफोबिया का, यूरोप में, अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ लोग करियर्स बना रहे हैं, प्रोवोकेटिव बातें करते हुए प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून्स बना रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि कार्टून्स तो बन रहे हैं फ्रांस में, लेकिन उसका रेडिकलाइजेशन इफेक्ट कीनिया में हो रहा है, तो उनके लिए बड़ा आसान हो गया है।
अफ्रीकी संघ की सेना 2006 से सोमालिया में अल शबाब के खिलाफ लड़ रही है। अंदरूनी राजनीति, भ्रष्टाचार, लचर सुरक्षा व्यवस्था, जातीय और कबायली टकराव, ये सभी अल शबाब जैसे गुटों को पनपने के लिए उपजाऊ जमीन मुहैया कराते हैं। निवेदिता राय बताती हैं।
अल शबाब ग्रुप का पर्टिकुलर जो विस्तार हुआ है, सिर्फ अल शबाब यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि अल शबाब का भी बोको हराम से AQIMC के भी कनेक्शन और लिंकेजेस हैं। तो किस तरह से ये डील करेंगे, ये चैलेंज इतने जल्दी मुझे नहीं लगता है इसका वो हो सकता है।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा शुक्रवार से कीनिया के 3 दिन के दौरे पर होंगे। क्षेत्र की सुरक्षा भी उनके एजेंडे में शामिल है, लेकिन मुक्तदर खान कहते हैं कि सिर्फ सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने से कुछ नहीं बदलेगा, कुछ बदलना है तो आर्थिक हालात बदलने होंगे।
क्या वो एक ऐसा डेवलपमेंटल इनिशिएटिव लॉन्च कर सकते हैं जिससे अफ्रीका की इकोनॉमी में ऐसी तब्दीली आई कि 10 साल बाद लोग कहें कि वाह, ये ओबामा हैज चेंज, जैसा कि मार्शल प्लान ने यूरोप को बदल दिया था। ये सवाल है और उनके पास 1.5 साल है और इस ट्रिप में देखें कि ओबामा किस को तवज्जो देता।
वैसे भी हथियारों या सेना के दम पर चरमपंथियों को खत्म तो किया जा सकता है, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा की तरफ लोग खींचते रहते हैं, खासकर वो लोग जो अपने आप को उत्पीड़ित और उपेक्षित समझते हैं और बदला लेने को आमादा होते हैं। और ऐसे में ही वेस्ट गेट मॉल जैसे हमले सामने आते हैं। इसलिए अगर अलशबाब जैसे गुटों का रास्ता रोकना है तो बिना कोई भेदभाव किए सभी के लिए तरक्की के रास्ते खोलने होंगे, जबकि अफ्रीका के कई देशों में अभी तो हालात ये हैं कि हथियार मिलना आसान है और रोटी मिलना मुश्किल। अशोक कुमार, BBC, दिल्ली।
आपको दुनिया जहां कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। और अब खेल समाचार। और खेल समाचारों के साथ स्टूडियो में आ चुकी है राखी शर्मा। राखी, ये बताइए कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच चौथा वनडे चल रहा है और अभी पाकिस्तान बैटिंग कर रही है, कैसा खेल रही है?
जी बिल्कुल, शुरुआत तो अच्छी दमदार दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी टीम की 81 रन बना लिए हैं, सिर्फ एक ही विकेट गंवाया है। 12.5 ओवर की बल्लेबाजी कर चुकी है अब तक। क्रीज पर अगर बताएं तो अहमद शहजाद 41 और मोहम्मद हफीज 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। इकलौते आउट होने वाले बल्लेबाज जो रहे हैं वो अजहर अली के रूप में पहला विकेट गिरा पाकिस्तान टीम का और इन्हें 33 रन पर आउट किया लसित मलिंगा ने। लक्ष्य दिया है श्रीलंका की टीम ने 257 रन का और पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 256 रन बनाए थे, जिसमें लाहिरु थिरुमन्ने के 90 और तिलक रत्न दिलशान के 50 रन का योगदान अहम रहा। पाकिस्तान के लिए सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद इरफान रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 50 रन देकर 3 विकेट झटके। तो फिलहाल पाकिस्तानी टीम की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। देखते हैं, पिछला वनडे मैच इन्होंने जीता था तो इस वनडे मैच में भी उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।
जी, और इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच भी अनऑफिशियल टेस्ट मैच आज हुआ, कैसा रहा?
जी, यहाँ पर 4 दिनी अनाधिकारिक टेस्ट मैच इसे कहें तो भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में चेन्नई में शुरू हो चुका है। आज दिन का पहला खेल था। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम की अगर बात करें तो 221 रन उन्होंने बना लिए 6 विकेट खोकर। पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी का इस मैच में फैसला किया था और आज 77.1 ओवर बल्लेबाजी की और 6 विकेट गंवाए। आज जो 2 भारतीय बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया उसमें कप्तान चेतेश्वर पुजारा थे, जिन्होंने 55 रन की पारी खेली। इसके अलावा केवल 4 रन से चूके सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल। श्रेयस अय्यर ने 39 और नमन ओझा ने 10 रन का योगदान दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से एंड्रयू फेकेट ने 17 ओवर की गेंदबाजी में 38 रन देकर 2 विकेट झटके। इसके अलावा स्टीव ओकीफ ने 2 विकेट झटके, लेकिन 19 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 66 रन खर्च कर डाले थे।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद खेल समाचारों के लिए राखी आपका। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष के विरोध और हंगामे से भरा रहा। विपक्ष ने आज भी भाजपा के 3 नेताओं के इस्तीफे की मांग की। उधर सरकार ने यह साफ कर दिया कि उसके मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। उत्तरी अफगानिस्तान में एक बम विस्फोट में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर लोग नागरिक हैं। टेक्सास की एक काली महिला की मौत की जाँच कर रही अमरीकी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का वीडियो फुटेज जारी किया है। उधर सैंड्रा का परिवार उसकी मौत की स्वतंत्र जाँच की मांग कर रहा है। यमन के शहर अदन का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 महीने की लड़ाई के बाद फिर खोल दिया गया। ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ड्रोन्स के मालिकों के लिए सुरक्षा की नई हिदायतें जारी की हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ दिन भर में आज बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक कुणाल शर्मा के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।